काजिम साहब अभी तक नहीं सोए?
नींद उड़ गई है,
अरे क्यों,
यूं ही,
यानी क्या?
यही समझो। अशरफ, तुम्हें भाईजान की बातें समझ में आई?
अरे वाह, भाई कैसे बातें करते हो जो समझ में ना आए।
कैसे की बात नहीं, क्या कहा था?
भाई जाने तो बहुत सी बातें की, कौन सी बात?
यही मीरास और जायदाद की बात।
मैं तो कहती हूं कि हमें इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही सही है सब।
मतलब तुम्हें बुरा लगता है कि मालिक मकान बन जाओ और एक चीज की मिल्कियत मिल जाए? फर्क यह है कि तब तुम्हारी मर्जी चलेगी।
इस वक्त भी तो चलती है।
नहीं, तुम्ही ने कहा कि कमरा नाजनीन के लिए बनाना है। तुम ही कह रही थी कि मेरी बच्ची के सामान फैले रहते हैं। अम्मी ने उसे जो इतना सामान दिया वो भी खराब हो रहा है।
काजिम साहब फालतू में बातें ना बनाओ। अरे अभी तो कह रहे थे कि ये कमरा बहुत बड़ा है, पार्टीशन कर लेंगे और क्या कर देंगे।
हाँ, लेकिन अगर इस वक्त इस घर में बुनियादी तब्दीली लाना चाहें तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेने के लिए पूरे खानदान को वहां ले जाना पड़ेगा, और वो जरूरी है क्योंकि घर सबके नाम है।
तो और क्या, सबका घर सबके नाम है,
हाँ, उसके बाद जिस घर में है वही घर हमारे नाम हो जाएगा।
तो इसमें बुराई क्या है? तुमने ही तो कहा कि जो चीज के मालिक हो वो तुम्हारे पास हो।
अशरफ, तुम उस हवेली जैसे घर और इस छोटे से घर को एक समझती हो? उस घर का मेहमान खाना तीनों घरों के बराबर है।
क्या मतलब?
कुछ नहीं, बस यही वजह थी जो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बस।
बेटा कुछ सोच रहे हो?
मैं नहीं तो, यानी भाईजान की बातों के बारे में सोच रहा था। नहीं पता क्या जरूरत थी इतने दिनों तक क्यों रजिस्टर अपने पास रखे हुए थे। सब जानते थे कि भाईजान ने क्या किया है, हिसाब किताब की जरूरत नहीं थी।
हाँ सब जानते हैं मोहम्मद अली ने बड़े भाई होने का हक अदा किया है, लेकिन लोगों को पहचानना आसान नहीं है, और अगर कल को कोई बात हो तो किसी को कोई एतराज का हक नहीं होना चाहिए। मोहम्मद अमीर बेटे,
कैसा एतराज फूफी जान?
क्या पता, इंसान ही तो है, कुछ भी हो सकता है मेरे बेटे।
किसी ने कुछ कहा है क्या फूफी जान?
नहीं, मौका ही नहीं मिला। थोड़ा इंतजार करो, मैं दुआ करती हूँ खुदा करे मेरी सारी बातें गलत हों, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है। क्यों मैंने अपने ससुराल वालों को छोड़ा, यानी उन्होंने मुझे छोड़ा।
ये क्या बात है अम्मी, आप उन लोगों को इन लोगों से मिला रही हैं? दोनों खानदानों में बहुत फर्क है, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हैं आप।
इत्तेफाक से कभी इंसान को वही से चोट लगती है जहां से वो सोचता भी नहीं है।
सब एक तरह के थोड़ी होते हैं फूफी जान। सुना नहीं मोहम्मद बाकर भाई ने क्या कहा? कह रहे थे हम सब एक हाथ की उंगलियां हैं, जरूरत पड़ने पे मुट्ठी बन जाएंगे।
हाँ, लेकिन एक हाथ की उंगलियां भी एक तरह की नहीं होती हैं, उनमें भी फर्क है, उनकी शक्लें भी एक तरह की नहीं है।
खुदा कबूल करे अम्मी।
इंशाल्लाह।
ये नमाज इस वक्त?
शुक्राने की नमाज थी बेटा।
शुक्राने की नमाज किस लिए?
उसी के लिए जिसके लिए तुमने आज रोजा रखा है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली,
आप जब भी मुझे मेरा नाम लेकर पुकारती हैं तो कोई अहम बात होती है, कोई बहुत जरूरी बात।
यानी मैं बेकार की बातें भी करती हूँ, है ना?
अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैंने कब ऐसा कहा अम्मी जान, आपके नाजुक दिल के कुर्बान जाऊं।
खुदा ना खास्ता, खुदा तुम्हें अच्छा रखे, तुमने अपने बाप से जो भी वादे किए थे वो पूरे किए। लेकिन
देखा ना, मैंने कहा ना कोई अहम बात है, देखा ना।
शरारत नहीं, मुझे अपनी बात कहने दो। तुमने अपने बाप के अलावा किसी और से भी वादा किया था?
नरगिस,
खुदा का शुक्र है कि तुम्हें याद है।
हाँ, लेकिन जो वादे मैंने बाबा से किए थे वो भी पूरे नहीं हुए हैं, अभी बाकी हैं। मोहम्मद अबीर की भी शादी नहीं हुई है।
बहानेबाजी ना करो, मैंने वो भी सोच रखा है। इसी शबे जुमा को तुम्हारी बतूल फूफी से बात करूंगी।
शबे जुमे को क्यों?
और पहले, कुछ ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें, मैंने डायरी में देखा है वो बहुत अच्छा दिन है।
इंशाल्लाह मुबारक हो। लेकिन आप तो बतूल फूफी से बातें कर चुकी हैं।
वो सब हम लोगों की बातें थी, रस्में तो पूरी करनी है ना।
जी हाँ, जैसे आपकी मर्जी।
उसके बाद तुम्हारी बारी है। बतूल फूफी कह रही थी इसी शब में बात करेंगे, तुम्हारे चचा भी तो हैं। दो एक महीने में नीलोफर की क्लास भी खत्म हो जाएंगी और इम्तिहान भी। उसके बाद खुदा ने चाहा तो तुम दोनों की शादी इसी घर में साथ में कर देंगे।
नहीं अम्मी जान, मेरी और नरगिस की बात अलग है। मोहम्मद अमीर और नीलोफर अभी नौजवान है, वो चाहेंगे उनका प्रोग्राम धूमधाम से हो, सबको लुत्फ आए। अब उनकी शादी हो जाए तो मैं भी नरगिस को यहाँ ले आऊंगा, बस।
अरे मैं ऐसा होने दूंगी? वो बेचारी इतने दिन तक तुम्हारे इंतजार में रही है और तुम इस तरह से उसका जवाब देना चाहते हो।
असल में अच्छी बात नहीं अम्मी, बुढ़ापे में नौजवानों की तरह चोचलेबाजी करें।
तुम बूढ़े कब से हो गए? और नरगिस, वो तुम्हारे इंतजार में थी, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे इतने दिन इंतजार के बाद मजबूर हो गई और उसे जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। अपने कान खोल कर सुन लो, सुना, सुन लो अपने कान खोल के। मोहम्मद अली, तुम भूल गए तुम्हारे बाबा तुम दोनों की शादी किस अंदाज से करना चाहते।
खुदा उनको गरीक रहमत करे, खुदा पर ही भरोसा है, देखते हैं क्या होता है। तुम आ गए, पहुंचा दिया ना? अरे ये क्या कर रहे हो?
जान आपको बहुत चाहता हूँ।
अरे क्या है, मुझे कुछ नहीं होने वाला भाई।
खुदा ना करे, बस ये कहना चाह रहा था कि अगर किसी दिन किसी ने आपको कुछ कहा या कोई गुस्ताखी की तो बाबा जान की रूह की कसम उसको नाबूद करके छोड़ूंगा।
तुम कह क्या रहे हो? कोई बात हो गई, किसी ने कुछ कहा?
नहीं बस यूं।
मैं तो समझा कि अम्मी जान की बातें सुन ली जो खिल उठे इतना तुम।
कैसी बात है अम्मी?
कुछ नहीं, बाद में बता दूंगा।
अम्मी बताइए ना।
बता दे अम्मी।
तय है कि शबे जुमा को बतूल फूफी के यहाँ जाएंगे रिश्ता तय करने।
इसी शबे जुमा को?
हाँ बिल्कुल, इसी शबे जुमा को, बेहोश ना होना, है ना? ठीक है ना?
उसे सताओ नहीं भाई।
हाँ बिल्कुल।
फिर तो मैं आपको बहुत ज्यादा चाहता हूँ।
बेशर्म,
मेरे पीछे ना छुपो,
मैं आपका खादिम हूँ।
आ जाओ।
फिर तुम्हारी नजर अपने बाबा की तस्बीहों पर पड़ गई और पुरानी यादें सताने लगी?
नहीं नहीं, मैं इस रेडियो के बारे में सोच रहा था। क्या दिन थे जब तक बाबा थे, खाने के बाद इस रेडियो के इर्द गिर्द जमा होते थे हम लोग। मैं हमेशा बाबा की गोद में बैठता था, इतने सुकून की जगह थी कि मैं बीच में ही सो जाता था। सुबह उठने के बाद भाईजान के पीछे दौड़ता था ताकि किससे कहन पूछ सकूं। बाबा अचानक चले गए, बिल्कुल अचानक। अगर भाईजान ना होते, भाईजान ने इतनी मेहनत की लेकिन कुछ भी जिक्र नहीं किया, कुछ भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
तमाम हाजरीन को मेरा सलाम।
सलाम अलैकुम। सुबह बखैर।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।
मैं तो सोता रह जाता, अगर अम्मी ने ना उठाया होता तो बहुत नींद आ रही थी।
ये प्रोग्राम शबे जुमा को रखना चाहिए था ताकि अगले दिन छुट्टी रहती।
हर रोज तो नहीं होता ना, एक बार ये भी सही।
लेकिन मजा बहुत आया, बहुत मजा आया। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी इतना नहीं हंसा। इसी खुशी के बीच बाबा की याद में रोए भी हम।
खुदा उनकी मगफिरत करे।
मैं तो एक आजाद परिंदे की तरह बहुत ही खुश हूँ, बहुत खुश हूँ।
खुश तो रहना ही चाहिए, इतने अच्छे खानदान, इतने अच्छे लोगों में।
हाँ वाकई, अगर तुम इस खानदान में ना आए होते तो पता नहीं क्या होते, अल्लाह ही जानता है।
माफ कीजिए मोहम्मद बाकर साहब, कौन किस्सा कह रहा है ये तो देखिए।
इसे देखो।
लेकिन कल की रात बहुत ही अच्छी रात थी मोहम्मद बाकर।
जावेद निगाह बहुत अहम है हम जुल्फ मोहतरम। इस बीच बहुत सी चीजें तकसीम हुई, एक बगैर गोश की हड्डी मुझे भी मिली।
तुम तो बस काजिम भाई, बस अपने पेट के बारे में ही सोचना।
मेरा मतलब पेट नहीं था, सिर्फ पेट की बात तुम करते हो।
क्या मतलब? तुम्हारा मतलब क्या था? कैसी हड्डी?
खड़ी बातें कर रहे हो, नमाज का वक्त गुजरा जा रहा है।
ठीक है अम्मी जान, खुदा आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे। जल्दी करो, नमाज कज़ा हो जाएगी।
मोहम्मद हसन, काजिम क्या कह रहा था?
बकवास। क्या काजिम को नहीं पहचानते? उसकी जबान बिल्ली की जबान की तरह खुरदुरी है।
अरे भाई, ये काजिम की अकल तो उसके घुटनों में है। जब तक अपनी असली जगह पर पहुंचे बहुत टाइम लग सकता।
नहीं, वो भी अगर पहुंच सके तब, लेकिन नहीं पहुंचेगा।
सलामुन अलैकुम।
अलैकुम सलाम।
सुबह बखैर मेरे भाइयों।
आपकी भी सुबह बखैर हो जनाब।
मेरे दोस्तों और अजीजों, आज का नाश्ता मेरी तरफ से है, और वो भी मजेदार नहारी के साथ, और वो भी गर्मा गर्म तिल वाली रोटी के साथ। बिस्मिल्लाह।
क्या बात है, जल्दी दो, लाओ मुझे जल्दी से।
ये मोहम्मद हसन को भी ना, जितनी भी चर्बी वाली चीजें हो कुछ ज्यादा ही पसंद है। ये सब तुम्हारे दिल के लिए नुकसानदेह मोहम्मद हसन।
ये बताओ तुम उठे कब, कितनी सुबह सुबह बाहर निकल पड़े?
ये मत पूछो भाई,
मुझे यकीन है रात भर सो नहीं पाए होगे।
अरे शैतान लड़के, बिल्कुल मेरे जैसे
खानदानी है। हाजी यूसुफ के सारे बच्चे ऐसे ही हैं, दिल से सोचते हैं, दिल से बोलते हैं, दिल से काम करते हैं। चलो अंदर भैया।
चलिए।
अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। सलाम वालेकुम। कैसे हो मोहम्मद? सलाम वालेकुम जलाल साहब। जलाल साहब
उधर गए हैं।
सलाम वालेकुम जलाल साहब।
शुक्रिया, आ जाओ।
आपके सामान में 8 नंबर की सुई मिलेगी।
क्या हुआ, आपके भाईजान ने लापरवाही की है? सुई खत्म हो गई क्या?
खत्म नहीं हुई है, स्टोर में छत तक सामान लदा है, लेकिन किसी खास कस्टमर का काम है, उसे बहुत जल्द देना है। स्टोर से निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा।
वहाँ है, वहीं पीछे से जाके ले लो।
ठीक है।
जब तुम्हारे पास ऑर्डर था तो क्यों सवेरे ही चले गए छुट्टी करके?
इसलिए कि कल रात को सैयद यूसुफ के आखिरी बेटे का निकाह था, इसीलिए काम बीच में छोड़ दिया था, लेकिन बहुत मजा आया, आपकी कमी थी।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आखिरी कभी हला भला हो ही गया, और सब खैरियत है?
नई खबर यह कि आज ही कल में हमारे भाईजान तमाम दुकानें खरीदने वाले हैं, आपको भी दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी।
क्या हुआ, कहीं से खजाना मिल गया क्या उन्हें?
बहुत दिन हो गए, तुम्हें पता नहीं है, कल रात इसीलिए इकट्ठा हुए थे।
क्या कहने के लिए?
कि कारोबार बढ़ाने के चक्कर में हैं और इस तरह की बातें। मेरे ख्याल में आप कारोबार बदल दें, मुझे खौफ है आपका काम बैठ जाए, क्योंकि बाजार तो भाईजान के हाथ में है।
भाईजान जिसको भी चाहे अपनी ताकत दिखाएं, लेकिन मेरा मुकाबला नहीं कर सकते।
फिर देखते रहो।
मुझे ये नहीं पता कि इस बीच में तुमको क्या मिलने वाला है, जितना सीना तान के बोल रहे हो। वो लोग कई भाई हैं बेवकूफ।
लेकिन बहनें भी हैं, जिनमें से एक मेरी बीवी है।
उन 10 में से एक तुम हो, तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम अपने लिए कुछ हाथ पैर मारो, मेहनत करो, कुछ रास्ता निकालो, वो लोग कुछ ना कुछ अपना कर ही लेंगे।
ये सब बातें छोड़ो, असली चीज तो मेरे पास है, मोहम्मद अमीर की मिठाई है।
अच्छा, लड़की कौन है?
कोई गैर नहीं है, तुम्हारे चचा की बेटी है, नीलोफर बेगम। स्टोर से निकलने के बाद भेजवा दूंगा जलाल साहब। खुदा हाफिज।
ये लो, ये विरासत से मुतालिक तमाम कागजात यहाँ मौजूद हैं, इसे टैक्स ऑफिस ले जाओ, वहाँ दरख्वास्त देना।
तो ये दरख्वास्त क्या मुझे ही लिखनी होगी?
नहीं, वो एक फॉर्म देंगे, वो भरना होगा।
ठीक है।
मोहम्मद अमीर, ध्यान रखना भैया, मैं नहीं चाहता कि इस मामले में कोई मसला पैदा हो।
कैसे मसाइल?
ये कागजात अगर उलट पलट गए तो सारा काम फिर से करना होगा, ये है मसले
भाईजान। ठीक है,
बोलो, क्या कहना चाहते थे, बोलो।
कुछ नहीं, मैं कहना चाह रहा था कि आज तक आपने मेरे कामों में गड़बड़ी देखी।
नहीं, लेकिन आज के बाद अगर ध्यान कहीं और ना जाए तब बात है।
जो चाहे कहें भाईजान। खुदाफिज़।
जाओ, ध्यान रखना
मिर्जा साहब। खुदाफिज।
खुदाफिज बेटा, आराम से जाना।
मिर्जा, चाय पियोगे?
अभी कुछ कर रहा हूं, अभी खुद ही बना लूंगा।
बैठ के थोड़ा आराम कर लो, मैं चाय लेके आता हूं।
अरे मैंने खुद ही कहा था मैं अभी आकर चाय देता हूं।
परेशान हूं मिर्जा।
वो किस लिए?
मुझे खुद ही नहीं मालूम,
शायद जो तुमने आजकल मौजू छेड़ रखा है उसकी वजह से।
क्या पता, अब्बा ने हमेशा सिखाया था कि अपने पैरों पे खड़े रहना। कारखाने की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, कितना धागा लेना है और किससे उधार लेना है, किसे उधार देना है, क्या करना है, लेकिन हमेशा उनकी तवज्जो मुझ पर थी। जब मैं किसी उलझन में होता तो उसे जरूर पूछता था, उनसे हमेशा मशवरा लेता था, उनकी राय पूछता था।
अभी भी पशु पेश है?
नहीं, ये काम कभी ना कभी तो होना ही था।
अपने दिल की बात कहिए।
कभी ऐसा भी होता है कि रात में नमाज पढ़कर आराम से सही और सालिम सोते हैं हम, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो वो पहले वाली बात नहीं रहती, बदले बदले से लगते हैं, मिजाज भी अच्छा नहीं रहता, कहीं तकलीफ महसूस होती है, लगता है मैं कोई और हूं, कोई और आदमी हूं।
हाँ, ऐसे ही होता है।
कल रात अच्छी रात थी, लेकिन सुबह उठने के बाद सब कुछ बदला बदला से लगा, तशवीश हो रही है मुझे।
आपकी खिदमत में अर्ज है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब पैर उठाकर रखते हैं तो देखना चाहिए कि कहां रख रहे हैं। आपको अपने अतराफ पर तवज्जो देनी चाहिए, बाज ऐसे हैं जो आपकी इतनी तरक्की को हजम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे
भाईजान, जहमत होगी किसी को भेज दीजिए, स्टोर जाकर सुई ले आए, खत्म हो गई है।
अभी जरूरी है?
अभी तो जाकर जलाल साहब से ले ली मैंने, उन्हें वापस करना होगा।
उनसे क्यों ली? मुझसे कहा होता, जरा अपने काम पर तवज्जो दिया करो, पहले से बताना चाहिए था।
कभी कभी हो जाता है भाईजान, आपकी तरह तो सब नहीं है ना कि हर चीज का हिसाब किताब रखें।
ठीक है, मैं किसी को भेजता हूं लाने के लिए।
शुक्रिया।
सुनो भाई, मैंने कल तुम्हारे भाईजान से कह दिया है, दोनों शादियां एक साथ होंगी।
ये तो बहुत अच्छा होगा, सबसे छोटे भाई और सबसे बड़े भाई की शादी एक साथ होगी।
बीच वाले ज्यादा तेज थे, लड़के भी लड़कियां भी। लेकिन मेरा बच्चा मोहम्मद अमीर तो कल रात भर नहीं सोया, सिर्फ करवटें बदलता रहा।
दूसरे भाइयों का भी यही हाल था।
जैसे कौन?
पता नहीं, यूं ही कह दिया मैंने। लेकिन काजन साहब तो बोल उठे।
क्या कहा उसने?
पता नहीं कि ये घर बहुत छोटा है, वो घर बड़ा है, इस तरह की बातें।
अरे ये क्या बात हुई?
अलबत्ता आजम, मैंने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। काजम साहब भी चुप हो गए थे।
बुरा ना माना बहन, लेकिन ये तुम्हारे शौहर भी अभी बच्चे ही लगते हैं।
वाह आजम।
सलामुअलैकुम इंजीनियर साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
सिलाई खोल रहे हो?
अभी तो खोल रहा हूँ, देखो क्या होता है।
सलामुअलैकुम काजिम साहब।
भाई इतना काम मत किया करो, थक जाओगे।
मैं नहीं थका हूँ, आप बस अपने बारे में सोचें।
वाह वाह चहीते हमजुल्फ मोहतरम, क्या हो रहा है?
बस काम चल रहा है।
ये लो ये सुई लो।
एक बार और सुई कहो। नहीं वाकई एक बार और कहना।
ओहो खैरियत तो है, बहुत खुश नजर आ रहे हो।
जानते हो तुम, मुझे ऐसी रातें बहुत पसंद हैं। जब इतने रिश्तेदार एक साथ इकट्ठा होते हैं तो बहुत मजा आता है। क्या ख्याल है?
हाँ लेकिन अगर इसमें कोई दिखावा न हो और कोई इस बीच ऐसे मौकों का फायदा न उठाए और मजलूम दिखाकर खुद को और मुझे और तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश न करे।
बेवकूफ बनाए? ये बताओ जब तुम कोई बात कहना चाहते हो तो इतना घुमाते क्यों? सीधी सीधी बात करो, देखें क्या बात है।
मेरे खुदा तुम क्यों नहीं समझ रहे हो अब्बास भाई?
तुम बोलो मैं समझ जाऊंगा।
जरा आओ बताऊं। आओ भाई।
जाओ अभी आता हूं।
अस्सलामुअलैकुम। चाचा जान है?
नहीं मस्जिद गए हैं, बस अभी आते ही होंगे, आ जाइए।
नहीं ठीक है मैं बाद में आऊंगा।
क्यों अभी आते ही होंगे?
नहीं अब।
देखिए वो आगे।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हो? तुम चलो।
आए
ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या?
अम्मी को जल्दी है, कह रही थी थोड़ा पहले शादी और रुखसती हो जाए तो अच्छा है।
हाँ ये बात तो ठीक ही है।
अम्मी को इसरार है कि शादियां अभी मुकम्मल रसूमात के साथ हों ताकि बतुल फूफी खुदा न खास्ता ये ना सोचे कि ये रिश्तेदार थे।
तुम्हारी बतुल फूफी ऐसी नहीं है, वैसे तुम्हारी अम्मी भी ठीक कहती है। नीलोफर यतीम है और उसके ददियाल वाले भी उसके पीछे पड़े हैं। तुम जानते हो कि बतूल भी कमजोर दिल की है।
अम्मी कह रही थी कि शायद बतूल भूभी उनका लिहाज करे और कुछ कह ना पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि आप उनसे बात करें, देखिए वो क्या सोच रही हैं। खुदा नखास्ता रुखसती के दिन कोई ऐसी ऐसी बात ना हो जाए।
ठीक है मैं अपनी बहन से बात करता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है चाचा मैं चलता हूँ अब।
जा रहे हो?
जी आपकी इजाजत से।
अभी तो आप आए थे, जाने लगे پھل لائی ہوں میں.
زحمت کیا آپ نے, بہت بہت شکریہ. اب چلتا ہوں, خدا حافظ.
خدا حافظ.
محمد علی, انہیں جانتے تو ہو؟
ہاں وہی جو ٹیچر ہے نا.
ہاں حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں, پیسے کی مشکل ہے. ایک بیٹا اور بیٹی کالج میں پڑھتے ہیں, ان کا خرچ ہے. البتہ مجھ سے کچھ نہیں کہا بیٹا, میں نہیں چاہتا کہ کوئی سمجھ پائے کہ ہمارے درمیان میں ہی بات رہنی چاہیے. اگر انہیں اپنے ہاں کو کام دے سکو تو.
اچھا ٹھیک ہے, اسٹور میں کام کر سکتے ہیں.
اگر بھاری کام نہ ہو تو کیوں نہیں.
نہیں بھاری کام نہیں ہے, ٹیلی فون کا جواب دینا ہے اور سوئی دھاگے وغیرہ جس کی ضرورت ہے اس کے کارخانے میں بھیجوانا ہے اور اس کا حساب کتاب رکھنا.
ٹھیک ہے بیٹا, میں ان سے کہہ دیتا ہوں.
ٹھیک ہے, انہیں بھیج دیں, میں باقی باتیں وہیں کر لوں گا.
خدا تم کو جزائے خیر دے بیٹا. خدا حافظ.
ٹھیک ہے,
بالکل تمہاری طرح.
اللہ اور برکت دے, جات دیجئے.
خدا حافظ. اور بھائی سب خیریت تو ہے؟
ڈاکٹر کے پاس گیا تھا.
بہت خوب جناب, خیریت تو ہے, کیا ہوا تھا؟
خیریت تو ہے لیکن آپ جیسے لوگ رہنے دیں, ہم جیسے لوگ تو قبر تک پہنچ چکے ہیں, کسی وقت بھی جا سکتے ہیں, بس اسی کا انتظار ہے.
یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو جنازہ ہو چکے ہیں لیکن اب تک زندہ ہیں, آپ کی کیا بات ہے؟
میرے پاس جب تک تم جیسے دوست ہوں تو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے جلال صاحب.
ارے بس کرو بھائی, میں تو خود قبلہ کا رخ لیٹ چکا ہوں, مطلب ہمیں لٹایا جا رہا ہے اسی طرح.
لیکن کیوں, کوئی خاص بیماری پھیلی ہے کیا؟
تو اور کیا, تمہیں پتہ نہیں ہے.
جاؤ اپنے آپ کو ڈاکٹر کو دکھاؤ, تمہاری طبیعت بہت خراب ہے.
سنا نہیں کچھ, بالکل بے خبر رہتے ہو.
بتاؤ تو کچھ.
خبر یہ ہے کہ ہمارا صفایا ہونے والا ہے, ہم ایسا پھینکیں گے کوڑے دان میں کہیں پتا نہ لگے. پھر
کون لوگ؟
بھائی جان اور اس کے بھائی, بڑا خطرناک منصوبہ تیار کیا ہے.
لیکن بات کیا ہے
احمد صاحب؟ سستی نہ کیجیے, اگر دیر کریں گے تو سیدھے جیل جانا پڑے گا, کچھ پتا ہی نہیں چلے گا.
اور جلال پھر... صاحب صاف صاف بتاؤ کہ بات کیا ہے, جبکہ تم سے صاف صاف بات سننے کی امید نہیں رکھنی چاہیے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب تم بھی میرا مذاق اڑاؤ. لیکن جب وہ شخص بھائی جان نے آ کر تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینکا کہ جاؤ اب تمہارا یہاں ٹھکانا نہیں ہے, تب سمجھو گے کہ میں کیا کہہ رہا تھا.
پھر کیسی سازش رچ رہے ہو جلال؟
میں نے کب کوئی سازش رچی؟
تم ابھی تک سدھرے نہیں ہو جلال.
مطلب ہے تمہارا؟
دیکھو اب تک محمد علی کے بھائیوں کے ساتھ دو بار لڑ چکے ہو اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی. اگر محمد علی نے شرافت نہ دکھائی ہوتی تو اس وقت پتا نہیں تم کہاں ہوتے. لیکن میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہے تم سدھرو گے کب.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لڑائی میں میری غلطی نہیں تھی, دوسری بات یہ ہے کہ اس بار میں نے کوئی سازش نہیں کی ہے, وہ خود ہمارے پیچھے پڑے ہیں.
تو ٹھیک ہے, سنبھل کے بیٹھو. مجھے یہ نہیں پتا تمہیں اس خاندان سے کیا دشمنی ہے. مزید کے بعد یہ ہے تم لوگ آپس میں رشتے دار بھی ہو.
کیسے رشتے دار, کبھی اس کی بھوبھی میری چچی ہوا کرتی تھی, اور پھر وہ بھی بہت پرانی بات ہے, اب وہ مر چکی ہیں.
لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بگاڑا کیا ہے تمہارا.
ارے تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو, کہہ رہا ہے پورا بازار قبضے میں کرنے والا ہے, وہ اپنے رقیبوں کو باہر نکالے گا, اور رقیب ہم اور تم ہیں.
لیکن محمد علی ایسے انسان نہیں ہے. اس خاندان سے لڑ جھگڑنا تم نے اپنے مرحوم باپ سے سیکھا ہے, انہیں بھی محمد علی کے باپ سے دشمنی تھی, اور اب تمہاری باری ہے.
نہیں, میں جو بھی کہوں تم ماننے والے نہیں ہو. ہاں میرے باپ کو ان سے دشمنی تھی, رشتے دار بھی ہوتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نہ سنو, لیکن تم دیکھنا ایک دن ہاتھ ملو گے, پچھتاؤ گے اور کہو گے ارے یہ کیا ہوا,
काश मैंने सुन ली होती जलाल की बात। जलाल क्या कह रहा था मुझसे?
कहना क्या चाहते हो?
देखो सुनो अहमद, इस बार का मामला हर दफा से बिल्कुल अलग है। हम उसे इस बार ऐसी पटखनी दे सकते हैं कि वो उठ ना पाए और समझ भी ना पाए कि किसने उसको ये पटखनी दी है।
और वो कैसे?
हाँ, ये हुई ना कायदे की बात, तो मेरी बात गौर से सुनो।
تو هستی به محتاج تو محتاجی حرومه چون